बहुत दफे एक महात्मा रहे, ये महात्मा उनके पास कुछ था नहीं, तो रोज बेगड़ की रोटी बनाते और बेगड़ के स्वयं खाते और भोग लगाते। तो एक दिन कोई संत आए उनके यहाँ, तो संत ने आकर के कहा, मैं देखूंगी कि भैया जो हैं ये बड़े सुंदर हैं, कोमल हैं, इनको तुम बेगड़ खिला के मक्खन खिलाया करो। उन्होंने कहा कि मक्खन खाना हो तो मक्खन वाले जा जाए, जिनके यहाँ मक्खन मिलता है वहां जाकर रहे, उनको इनको रखने के लिए कोई लालाई थे नहीं, उनकी मर्जी हो तो रहे, नहीं तो न रहे, बिगड़ खाना हो तो रहे। तो भगवान ने स्वप्न में कहा कि हम तो भी तुम्हारे यहाँ रहेंगे, बिगड़ खाएंगे। पर जहाँ भोग दृष्टि होती है ना, इसका यह अर्थ नहीं कि भगवान को अच्छी चीज लगे। भागवत में आया एकादश में कि भगवान को देने में किसी प्रकार की कंजूसी न करे, जो अपने पास हो बढ़िया से बढ़िया दे, परंतु उस बढ़िया से बढ़िया चीज का कहीं महत्व न हो जाए भगवान के सामने। तो बढ़िया चीज के लिए भगवत भाव को बेच न दे, बढ़िया चीज के लिए अपने भगवान को कहीं गिरवी न रख दे। तो रखता है आदमी, जब भोग परायणता होती है तो भोग सिद्धि के लिए भजन भी देता आदमी, भोग सिद्धि के लिए भगवान को छोड़ करके भोगी मनुष्यों की सेवा करता है आदमी। वो कहता है भोग चाहिए भगवान के लिए, परंतु वो भोग दृष्टि रहने के कारण से ये भगवान के लिए चाह करके भी अपने लिए चाहता है। ये समझने का वहां पर भाव है कि भोग दृष्टि कभी ना आने पावे। भोग दृष्टि आने पर श्री कृष्ण इस प्रकार से खेलते नहीं। ये यशोदा मैया में और ब्रज की गोपांगनाओं में, गोप सखाओं में भोग दृष्टि थी ही नहीं। शांत भाव से मनाई कब का इन्हें पहले आ करके और बहुत पीछे रह गया। तो इनके अंदर तो बिल्कुल सर्वथा और सर्वदा भगवत सुख दृष्टि थी, स्वयं सुंदर को सुखी करना। तो इनका भोग और भोग त्याग ये दोनों ही, भोग त्याग से भी इनके मन में कोई घृणा नहीं। जिस समय भोग त्याग से प्रसन्न हो भोग त्याग, और जिस चीज को खाने में इनको प्रसन्नता आदि है, गहने रत्न सोने और रत्नों के हार छोड़ करके जो गुंजाओं की माला पहना दी और वन के पत्तों की माला गूंथ करके सखाओं ने पहना दी, क्या भोग दृष्टि से ये उत्तम चीज है? बड़े बड़े बहुमूल्य सुंदर हार उनको तो नहीं पहनाया, ये पहना दिया, पर श्याम सुंदर को इससे सुख मिला। तो कहीं पर भी भोग भावना जहां रहती है वहां भगवान प्रकट नहीं होते। तो ये भगवान कहते हैं कि इन गोप बालकों का, इन गोपों का कितना बड़ा ये भाग्य है कि जो भगवान ज्ञानी संतों के लिए वो ब्रह्म सुखानुभूति रूप है, जो लोग दास भाव से भजने वाले भक्तों के लिए उनके आराध्य देव और ऐश्वर्य संपन्न सर्वेश्वर सर्वलोक महेश्वर परमेश्वर है, उनके लिए सर्वलोक महेश्वर परमेश्वर नहीं है, पर यह ज्ञान भी नहीं है। ये तमाम भोगों से पूजा करते हैं भगवान की, परंतु स्वयं ये भोग निष्ठ नहीं है, भोग व्यस्त है। तो जो भगवान ज्ञानी संतों के लिए ब्रह्म सुखानुभूत रूप है, जो भगवान दास भाव से भजने वाले भक्तों के लिए परम ऐश्वर्य संपन्न आराध्य देव है, और जो भगवान विषय विमोहित अज्ञान जड़ विषयांजन के लिए बालक रूप है, मेरा बच्चा है। श्री कृष्ण को जो बालक समझता है ना, मधुर भाव से नहीं अज्ञान से मोहन दही करके माया का आश्रय लेकर के जो समझता है कि ये बालक है, उसके लिए ये बालक है। परंतु यदि उन्हीं भगवान के साथ ये कृत पुण्य पूजा है, बिना इनके इन्होंने क्या पुण्य किए हैं, कितने कितना पुण्यों का समूह इनका प्रकट हुआ है आज, पुण्यों का फल कि ये महान पुण्य बालक ये भगवान के साथ इस तरह का बालकोचित खेल खेल रहे हैं अज्ञानी मनुष्यों के जैसा। कहते हैं जब ताज पांच दौर जन्म की श्रोत जताप में दूर योग विरोध से लभ्य है। कहते हैं बहुत जन्मों तक एक जन्म 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 जतन करा है, अंतराय न कही आवत नहीं, भगवान का नाम भी बड़ा प्रयत्न करने पर भी मुश्किल से प्राप्त होता है। और जो सिद्ध प्रसिद्धि प्राप्त हो जाते हैं, ब्रह्म सुखानुभूति को प्राप्त कर लेते हैं, उनके लिए ही जी भगवान को चरणों की रज अप्राप्त ही रहती है। बड़ी मुश्किल नहीं मिलते उनको। ये ब्रह्म सुखानुभूति जो है वहां पर भगवान की चरण रज नहीं मिलती, उसका तो उन्हें आदर ही नहीं है। ये तो विलीन हो जाते हैं वो सुख संधि में। तो कहते हैं बहुत जन्मों की तपस्या करने पर, श्रम करने पर, कष्ट करने पर भी, और अपनी इंद्रियों को मन को तपा कर वशन कर लेने पर भी योगी जिन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल रज को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, ये भगवान उन ब्रह्मवासी ग्वाल बालों के आंखों के सामने और उनके साथ खेलते हैं। केवल दिखते नहीं हैं, उनके साथ साथ वैसे ही बनकर सदा खेलते हैं। तो कहते हैं कि उनके सौभाग्य का क्या वर्णन किया जाए, ये परम सौभाग्य है। पर इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात है ये समस्त त्याग, ये मोक्ष सुख का त्याग भी यहां पर अपेक्षित होता है। किसी प्रकार की भी अपने सुख की कामना, उनकी सेवा के अतिरिक्त जब तक रहती है तब तक इस भाव का प्राकट्य नहीं होता। कुछ न कुछ छाया आती है भरी, पर वो रह जाती है माया। तो वृंदावन मंडल को देखने के लिए यमनियम आदि, प्राणायाम आदि, ध्यान करना, समाधि लगाना, इन सब की आवश्यकता नहीं है। परंतु आवश्यकता है अपने आप को समर्पण कर देने की। और फिर तो वो जिस प्रकार का खेल ब्रह्मा जी ने आवेगा, तो भूल भाग्य ने जन्म के मत कर दिया, बड़ी सराहना की कि इस वृंदावन में कोई कीट पतंग होकर के भी आ गया, कोई किसी प्रकार से जहर बन करके भी आ गया, वृक्ष लता गुण बन के भी आ गया, और यहाँ के ब्रज की धूल का कण बन कर भी आ गया, तो वो धन्य हो गया। क्योंकि यहाँ पर स्वयं चिदानंद घन परात्पर ब्रह्म श्री कृष्ण खेलते हैं। तो जिस भूमि में खेलते हैं वो धन्य, जिन लोगों के साथ खेलते हैं वो धन्य, जिन उपकरणों से खेलते हैं वो धन्य, जिस काल में खेलते हैं वो काल धन्य, क्योंकि यही सर्वोत्तम फल है, इसके परे और कोई फल नहीं। बड़े देवता, बड़े बड़े शिवेंद्र महेंद्र, जब उनके मन में ये चीज आती है तब वो पश्चाताप कर बैठते हैं कि हम इधर लगे नहीं, इधर नहीं लगे हमने। जैसे कोई आदमी अपने धन को खोकर दुखी होता है कि हमने गफलत में खो दिया, इसी प्रकार प्रेम का अंकुर पैदा जिनको होने को होता है, उन ज्ञानियों के मन में भी पश्चाताप होता है कि हमने प्रेम प्राप्त नहीं किया। ये कवि पुराण की कथा, ब्रह्म विद्या के मन में भी क्षोभ हो गया। जो ब्रह्म विद्या सबको स्वयं ब्रह्मानुभूति करवाने वाली, ये ब्रह्म विद्या स्वयं श्री कृष्ण प्रेम को न पाकर संतप्त हुई थी और उसने चिरकाल तक तपस्या की ज्योति भाव प्राप्त करके श्री कृष्ण का सेवन करने के लिए, क्योंकि ब्रह्म विद्या को भी ये ज्ञान हो गया, ज्ञान गई ब्रह्म विद्या कि केवल ब्रह्म की प्राप्ति ब्रह्म सुखानुभूति ही सर्वोच्च स्थिति नहीं है, प्रेम प्राप्त करना श्री कृष्ण का यही चरम और चरम उद्देश्य होना चाहिए। गीता इसका संकेत है, मनुष्यानाम सहस्रेषु ऐसी युगत सिद्ध है सिद्धानाम कश्चन मान व्यक्ति तत्वतः, हजारों हजारों में कोई एक यत्न करता है सिद्धि प्राप्त करने के लिए। सिद्धि माने यहाँ योग सिद्धि नहीं है, अंतकरण की शुद्धि सिद्धि नहीं है, यहाँ सिद्धि है ब्रह्म सुखानुभूति ब्रह्म प्राप्ति। और उस ब्रह्म प्राप्त सिद्धानाम और प्रयत्नशीला नाम वो ब्रह्म प्राप्त करने के बाद भी मेरी प्राप्ति तत्वतः सबको हो जाए, ज्ञान हो जाए, ये नहीं होता। कश्चिन मान व्यक्ति तत्व मान व्यक्ति, तो ये मान व्यक्ति तत्वतः है, तत्व से भगवान मान माने भगवान श्री कृष्ण प्रेममय श्री कृष्ण, इनका ज्ञान कब होता है कि जब प्रेम प्राप्त होता है, तो ज्ञानोत्तर काल में ये प्रेम वांछा होने पर ज्ञानी भक्तों को होता है और जो सीधे ही प्रेम मार्ग में जाते हैं उनको हो ही जाता है, उनको ज्ञान की अपेक्षा नहीं होती। इस प्रकार से ज्ञान स्वयं आकर उनकी सेवा करता है। तो ब्रह्म रूप प्रसन्न आत्मा जब हो गए उसके बाद लगभग मदभक्ति लगती है, वहां मदभक्ति कहा मेरी भक्ति मेरा आश्रय, तो फिर वही मान अभिजाना की तत्व का वही चीज कश्चन मान व्यक्ति तत्व का व्यक्ति अभिजाना, तो भगवान कहते हैं कि भक्त्या मानो मान अभिजाना की यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो मान तत्व को ज्ञात्वा दिशते कदम अंतरम। इस प्रकार जो तत्व से मुझको जान लेता है उसका फिर लीला में प्रवेश होता है, ये घुल मिल जाता है भगवान। अतएव ये सिद्ध है कि ब्रजवासी के समान धन कोई नहीं, जिनके चरण कमलों का ध्यान नहीं हो सकता, जिनके चरण कमलों की धूल नहीं प्राप्त हो सकती, वो स्वयं लीलामय बनकर और बालक बनकर ज्ञानी बनकर उपदेश करें सो नहीं, अपने ज्ञान को ईश्वरत्व को छिपाकर ईश्वरत्व को भुलाकर स्वयं बालकों की भांति अज्ञता प्रकट करते हुए, अज्ञता को अपना स्वरूप देते हुए, अज्ञता माने वो अज्ञता उनकी न तो अज्ञान है और न वो ज्ञानाच्छादनी माया है स्वरूप, ये अज्ञता भी उनका स्वरूप है, ये विलक्षणता है, ये माया नहीं नाट्य नहीं दंभ नहीं, ये अज्ञता नहीं जानते ये क्या बोल रहा है नहीं जानते, ये उनका क्योंकि उनमें कोई बाहर की छाया माया नहीं आती, ये स्वयं ही सब कुछ बनते हैं। अज्ञता भी ये रस का आस्वादन करने के लिए स्वयं अज्ञता को स्वीकार कर लेते हैं अपने स्वरूप में, तो अज्ञता भी बड़ी विलक्षण, उस अज्ञता को देख करके प्रेमी मुनिगण जो है वो प्रसन्न होते हैं, शंकादि सुखादि नारदादि ये उस अज्ञता को देख करके मुहित हो जाते हैं कि देखिए अज्ञता कैसी है, कैसा ये अज्ञा बना, ब्रह्मा जी तो मोहित होते हैं, बाकी ये जो प्रेमी लोग हैं मोहित नहीं होते, उनका तो प्रेम और भी उछलता है कि किस प्रकार से ये कितने ऊंचे होकर के और किस प्रकार से नीची चीज को अपना स्वरूप बना लेते हैं, स्वीकार नहीं करते स्वरूप बना लेते हैं। तो इसलिए कहा कि इनका जो भाग्य है ये बहुत बड़ा भाग्य, इस प्रकार ये वन में इनका खेल चल रहा है। इधर इनका जो खेल होता है कंस को खबर लगी, कंस को पता लगा कि राम राम ये तो बकासुर भी मारा गया। अभी यहाँ पे ये आनंद का स्रोत बह रहा है, इस आनंद की रसमंदाकिनी में सब के सब मैंने डूबे चले जा रहे हैं। पर एक वर्ग ऐसा है, एक समुदाय ऐसा है, बहिर्मुख समुदाय है, आसुरी भावापन्न समुदाय, वो उसकी आंखें ये शीतल स्पर्श को पाकर भी शीतल नहीं होती बल्कि जलने लगती है। वहां भगवान का यही लीला स्वरूप है, उनको जलाकर भी सिद्ध करना है। उनमें इतना स्वर्ण में इतना वो मल भर गया है कि बिना चताए वो शुद्ध नहीं हो सकता। तो इन लोगों के मन में कभी उदय नहीं होता ये भाव, बल्कि वो तो चाहते हैं कि इस प्रवाह को रोक दें। इन असुरों का ये भाव होता है कि ये जो रस प्रवाह बह रहा है इसको खत्म कर दें, इसको अवरुद्ध कर दें। और इस वर्ग में इस समय नेता है, सबके सरदार हैं कंसराज। असुरों के समय भगवान के इस रस प्रवाह को रोकने में जो सन्नद्ध हैं, जो वर्ग, उस वर्ग के नायक सरदार हैं इस समय कंसराज, मथुरा के बादशाह थे इस समय। तो उन्होंने इनको जो सुना कि बकासुर मारा गया, बड़ा दुख मन में हुआ कि अरे वो बक मारा गया जिसने अपनी नींद में मुझको ले लिया था। कंस ने सोचा कि जिसने अपनी नींद में मुझको निगल लिया था ये बक मारा गया और उसकी सोच को चीर दिया। नन्हे से बच्चे ने हाथ में कैसे आई उसकी चोंच, वो विशाल चोंच। अरे एक जिसका हिस्सा पृथ्वी में लगा और एक दूर आकाश में ऊपर जा पहुंचा नक्षत्रों तक, तो ऐसे उस चोंच को उसने चीर डाला तो बड़ा दुख मिलने हुआ। क्या करें कि अगासुर रहा, ये भी बक का छोटा भाई था, ये भाई बहन से पूछना। तो अगासुर को बुलाया, अगासुर के मन में प्रतिहिंसा पैदा की, बोले देखो ना कितना ये छोकरा दुष्ट हो गया है कि जिसने तुम्हारी बहन को भी मार दिया और भाई को भी मार दिया। तो तुमको कुछ काम करना चाहिए, ये देवता भी इसके मारे सब डर रहे थे, देवताओं का जाया तो मुझ छीन लेता था और भगाता था मार के। तो देवता सब इससे डरते थे, तो ये अगासुर को तैयार किया तो तैयार करके भेजा। अथाद नामाधपतन महासुरस्ते शाम सुखत्री धन वीक्षण क्षण ीक्षते दृष्ट्यार्भका कृष्णमुखानघासुर कंसान सुष्टी बकाज अवंत सोदरना सुकर्तमयम सबलम मनुष्युदेस्तिदाप कृपा सदा नष्ट सनामस प्राणी गति वर्ष सुखा चिंता प्रजा सुल प्राण भतो जगड़ बृहदत सयोजनाया महाद्रुपी वरम भूत व्याप्त विभान तथिदिशनाशया खला। अघासुर ये पहुंचा भगवान जहां खेल रहे थे, यहां पहुंचाइए। और अब ये भगवान जो है ये तो सबका उद्धार करते हैं, प्रेमियों का केवल उद्धार नहीं करते, क्योंकि प्रेमियों का उद्धार करें तो अपने को उद्धार होना पड़े, अपना उतना उद्धार करना पड़े पहले। प्रेमी न रहे तो प्रेम में भगवान न रहे, तो प्रेमियों को कभी ये मुक्ति नहीं देती और दूसरों को अपना प्रेम नहीं देती, क्योंकि तो भगवान स्वयं प्रेम में बंधते हैं। सारा जगत बंधा हुआ है माया के बंधन से, हम सब बंधे हैं पर भगवान हमसे बंधे नहीं है, और प्रेमी स्वयं मुक्त हैं, उन्होंने भगवान को बांध रखा, वहां भगवान बंधे। ये बड़ा अंतर है, जिनके द्वारा भगवान बंधे वो प्रेमी, और भगवान की माया ने जिनको बांधा वो प्रेमी नहीं। जिन बांधे सुरसो नादनर प्रबल कर्म की डोरी, भगवान ने सुर नादनर देवता मनुष्य चुरियत सभी को भगवान ने बांध रखा, परंतु भगवान कहीं बंधे नहीं, ये नित्य मुक्त है। भगवान का स्वरूप स्वभावतः नित्य मुक्त, ये नित्य मुक्त जहां बन जाए वो है प्रेम का क्षेत्र, उस और इनको बांध रखने वाले प्रेम, तो भगवान कदापि उन प्रेमियों को मुक्ति नहीं देते, ये स्वभाव है। न देते हैं मुक्ति और न वो देते हैं मुक्ति, तो जो मुक्ति सुख कामी है उनके लिए प्रेमी ने कहा कि तुम लोग यहाँ बीच में आ करके और ये दूध में खटाई मत डाला करो, ये विनोद की भाषा नहीं है, सिद्धांत है कि वहां पर जहाँ निर्मल प्रेम है इस निर्मल प्रेम में विशुद्ध अनुराग में कहीं पर कोई दूसरा तत्व आ जाता है, चाहे वो तत्व कितना ही ऊंचा हो तो तत्व वो खटाई बनकर उस प्रेम को फाड़ने लगता है। इसलिए ये स्वयं भगवान जो हैं वे बंधे रहते हैं और बंधे रहने में उनको सुख मिलता है। ये बंधन सुख जो है ना ये केवल प्रेम नहीं और कहीं नहीं, तमाम बंधनों में मनुष्य या प्राणी मात्र को क्लेश होता है, कोई बंधन नहीं चाहता। आत्मा का स्वरूप मुक्ति है, सब एक चूहे को आप पिंजरे में बंद कर दीजिए वो छूटना चाहेगा, मक्खी को हाथ में ले लीजिए और निकल के भागना चाहेगा, पर जहां प्रेम बंधन है वहां कोई भी प्रेम बंधन से मुक्त होना नहीं चाहता। ये कहता हमारा ये प्रेम बनेगा तो ये प्रेम बंधन जहां भोजन में होता है वहां प्रेम बंधन नहीं होता, इसके नकल होती है वहां भी बंधे रहना चाहता है, निम्र क्या चाहते हैं घर में सब बंधे रहना चाहते हैं, लोगों से कहते हैं बोले क्या करें घर वाले छोड़ते नहीं, घर वाले को आज छोड़ गए, तुम आज काम के न रहो और घर वालों के लिए थोड़ा सा दुख देने वाले बन जाओ, घर वाले कहेंगे मत तो इनके भगवान सुन ले तो बड़ा अच्छा है, जल्दी मर जाए बड़ा अच्छा है, घर वाले सब चाहेंगे और बड़े अच्छी भाषा में कहेंगे बोले बहुत दुख पाते हैं, और बोले बात तीर्थ में जाके बैठ जाओ भजन करो, सोचते बीच बीच में बोलते कुछ काम के तो रहे नहीं, काम करते कमाते कुछ घर का काम करते संभालते तब तक तो काम की चीज थी, अब ये निकलने सब बीच बीच में अपनी हुकूमत चलाते हैं, बाबू के लिए मास्क बना लगाते हटाओ इनको यहाँ से, तो अच्छी भाषा में कहते हैं मेरे अब खर्च नहीं दिया करेंगे, इंतजाम सारा कर देंगे, आप तीर्थ में बैठो तुम छोड़ो हमारा किसी तरह से भगो, ऐसा होने पर भी हम भरना नहीं चाहते, इसका अर्थ क्या है ये मोह बंधन है, ये प्रेम के नाम पर मोह बंधन है, कि बंधन से आदमी जहां प्रेम मांग ही लेता है यहां भी छोड़ना नहीं चाहता। प्रेम बंधन ऐसा ही सही होता है तो भगवान को भी प्रेम बंधन प्रिय है कि स्वयं आकर के बंधते हैं, स्वयं अपने को बंधन में डालते हैं और उनको बांध लेते हैं, उनको कभी मुक्त नहीं करते। प्रेमियों को मुक्त कभी नहीं करते, मुक्त करना चाहते नहीं और प्रेमी भी चाहते नहीं। ये ब्रजनंदन में भगवान स्वयं ये ब्रजराज नंदन बनकर नित्य नई नई क्रीड़ा करते हुए खेल करते हुए ये ब्रजवासी भक्तों को आनंद दे रहे हैं, प्रेमियों को आनंद दे रहे हैं। और केवल यहाँ के ये मानव जाति के प्राणियों को ही नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग यहाँ के वृक्ष पर लता यहाँ की भूमि सभी मानव इस आनंद की लीला में बह रहे हैं और सभी मानव अपने को भूल चुके हैं। ये शोक मोह दुख दैन्य विषाद इत्यादि भय ये जो है ना, ये तो आनंद आस्वादन का विरोधी वर्ग है। ये जहाँ भगवान का ये मधुर मधुर लीला समागम होता है वहाँ ये सब हरे रहते हैं, यहाँ आनंद विरोधी वर्ग नहीं आता। तो शोक मोह दैन्य इत्यादि वहाँ नहीं आते, यहाँ तो परम आनंद में सब निमग्न रहते हैं। सागर में यहाँ हास्य लास्य नृत्य कलरव नवीन नवीन प्रेमाकांक्षा रसा स्वादन ये प्रेमोन्मत्तता मुग्धता ये सब जो आनंदवर्धक सब पदार्थ हैं यही वहां पर परिव्याप्त रहते फैले रहते। और पर जो बहुमुख जीव हैं भोली जीव उनको विषाद लगा रहता है, क्या करें बड़ी आफत है, चिंता लगी रहती है, शोक होता है, मोह होता है, ये रात भी चिंता चिंता प्रकट करते हैं। ये सिद्ध करता है कि भगवत प्रेम का अभाव है। भगवत प्रेम का आनंद जहाँ पर है वहाँ पर ये चीजें आ नहीं सकती, सूर्य के प्रकाश में अंधकार आ नहीं सकता, हिमालय में गर्मी आ नहीं सकती। इसी प्रकार से जहाँ ये प्रेम पूंजीभूत है वहाँ पर ये चीजें नहीं आती। ये आती है तो समझना चाहिए कि हम शोक मोह विषाद दैन्य के ही दास हैं, गुलाम हैं, प्रेम का हमारे अंदर अभी तक स्फुरन हुआ नहीं, ये आनंद आया नहीं। तो बजने के खेल क्या है, हास्य हसन हंसते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, नई नई प्रेमाकांक्षा पैदा होती है, रसास्वादन होता है और रस का परमोशन भी होता है। बांध के रस क्रस परोसते हैं यहाँ पर, सभी सुख परोसना है क्या? अरे कहीं कोई अमित का कहीं भोज हो तो यहाँ क्या पैसा जाएगा, अमृत पैसा जाएगा ना, यहाँ तो जहर है ही नहीं। तो वहाँ प्रेम राज्य में आनंद रस ही परसा जाता है, परोसा जाता है, उसी का परिवेशन होता है और आनंद में सब मत रहते हैं, मुग्ध रहते हैं। ये जो कूड़ा करकट है आवर्जना राशि कूड़ा करकट, ये भय दैन्य विषाद शोक का ये यहाँ आनंद के इस साम्राज्य में लोश कण का स्पर्श करने का भी इनका अधिकार नहीं। तो लेकिन वही आनंदमय श्री विग्रह, वही आनंदमय लीला ब्रज के थोड़ी दूर पर मथुरा में बैठे हुए बैरमुख शिरोमणि कंस के लिए विषाद और उद्वेग का कारण बन जाता है। युवराज नंदन की जितनी जितनी ये लीलाएं सुनता है उतना उतना ही उसका धीरज छूटता है, इतना उतना ही उसका विषाद होता है और इतनी इतनी मानो उसकी विषाद की आग में आज इतनी कम थी, जितनी प्रशंसा सुनी उतनी रोने लगा वो, जितनी लीला सुनी उतना उनके उसके मन में क्षोभ हुआ। वो समझता है तेरे राम राम ये मेरा शत्रु बन रहा है, अब ये मुझे मार देगा, मुझे मार देगा। तो पूछना सिक्का सुर तुम्हारा करके बच्चा सुर बका सुर कितने को भेजा, कहता हमने कितने को भेजा, तो किसी ने आकर के ये समाचार नहीं दिया कि हमने उसको मार दिया, उन्हीं के मरने का समाचार मिला। सभी माने अपने जीवन से युक्त बजा लेकर यहां से रवाना हुए कि क्या मेरे भी जीवन की शेष भूमिका आ गई, और मेरे बड़े भारी ये महाबल बड़े पराक्रमी पराक्रांत से सब मेरे पार्षद जिनके प्रताप से बल से पराक्रम से स्वर्ग राज्य भी कांपता है, ये क्या सभी की सभी इस छोटे से मनुष्य से गोप बालक से परास्त हो गए, क्या सभी की शक्ति कुंठित हो गई। इस प्रकार से चिंता करता रहता तो चाणूर मुष्टि पेशी ये सब खास खास सरदार रहे उसके, जितने अधिक दुष्ट उतने अधिक उनके प्यारे मंत्र, ये गुरु से गुरु सलाह दे वो अधिक प्यारा, ये थोड़ी सी बीच में बात कह दे माल्यवंत को राम ने लात मार दी, अच्छी सलाह दी विभूषण को लात मार के निकाल दिया, तो ये खड़े को अच्छी बात नहीं सुहाती, दुष्टों को कुशलता की बात कहे तो वो खारा लगता है बुरा लगता है। तो ये केसी और वो चाणी और मुष्टि के सब को सब दुष्टों के सरदार ये सब को सब उसके पास गए, बोले क्या अब की मार देंगे, अब की मार देंगे क्या अब की, उन लोगों ने सावधानी की होगी अब की मार देंगे, ये तो सामान है क्या ये बात नहीं। तो अगासुर को जब बुलाया अगासुर गया, तो अगासुर जब आया तो मैंने कहा कि चाहू मुक्ति राजे ने अब की हमने ऐसे को बुलाया है जो मार ही देगा, तो बात आ चुकी कंसल ने कहा कि देखो भाई कि इसने तुम्हारी बहन को मार दिया और भाई को मार दिया, तुम्हारे अंदर बदला लेने की बात जागी नहीं जागी, तुम इतने बड़े बहादुर वीर और बहन को मार दिया भाई को मार दिया, कीर्तन काटे तो केवल नाक कान काटे किसी पर इतना बाजुद्ध हो गया, और मुझे देवता होता जो बात किसने रावण हारगा नहीं हारगा हो गई, और अब तुम लोग इतने बहादुर वीर होकर के तुम लोग ऐसे ही बैठे हो, भाई को मार दिया बहन को मार दिया, पता सोचे कहा जल्दी जाओ, अरे तुम्हारे इतनी शक्ति इतनी ताकत, तो नम्रता से बोला बोले भैया देख तुमको हमारे अपने होना और विपत्ति में अपनी भी सहायता की जाती, अब विपत्ति में सहायता भी दो तरह की होती, बुरी सलाह जो कि विपत्ति में सहायता करे वो खुद भी मरेगा उसको भी मारेगा, विपत्ति में सहायता क्या है कि सदबुद्धि किसी को दे ये तो विपत्ति में असली सहायता है, और पाप बुद्धि में उसका और ज्यादा प्रवेश करवा दे ये तो गिरते हुए को धक्का मारना है, उठाना नहीं गिरते रहा ही था बेचारा पीछे से लात और मार दी। तो इन लोगों ने बस यही सब करते थे, तो बकासुर था ये मछुआरा हो जाए शाबाशी पा करके और कंस के प्रति प्रेम ज्यादा, बोले कोई बात नहीं तुम कंस महाराज अब डरो मत, अब हम जाते हैं जाते ही उसको क्या छोटा सा बच्चा है और हमारा तो बल आप जानते हैं बिल्कुल दीनता रूप से डरते हैं हमसे, हम लोग उसको कोई डरते ही नहीं, आप ही डर रहे थे जाए जल्दी। तो ये बड़ा बड़ा भारी पराक्रम गलत था, ये जब आकाश मार्ग से हुआ भैरवता सब रात दिन देखा करते थे बेचारे कहीं जाता है क्या होता है, उनको भी जल्दी कहीं से मरे जल्दी इनका काम हो तब कहीं शांति मिले, इन्होंने देखा देवताओं ने शरीर के आभास हो जा रहा है, देवता सारे के सारे जड़वत हो गए। अब इनको भगवान ने विश्वास भी और अविश्वास भी, स्वार्थी को पूरा विश्वास नहीं होता, मेरे अमुक देवता का जप करो उसका तो कर लिया कुछ हुआ नहीं, शायद नहीं हुआ दूसरे को करो, दूसरे का करेंगे, दूसरा तीसरा देवता बदलता गया क्या काम कर लेता ही नहीं, अविश्वास काम ही करने देते। तो देवता ने देखा कहीं हमारी ओर नहीं चल पा रहा, देवता ने बर्फ अच्छी नहीं लगा था उनका अम्र का देख लेगा ऊपर उठे, तो देवता लोग भागे, भाग करके और बाजरे की आड़ में छिप गए, छिप करके दूर से देखने लगे। अब देवता जब बहुत व्याकुल हो गए तो बृहस्पति जी ने कहा बढ़ती के हो भगवान है, बोले भगवान तो है तो पहले हम लोग मार डालेगा, भगवान तब तक इसको मारेंगे तब क्या होगा। तो देवता बड़े बड़े विपन्न हुए लगे कि महाराज देखो मालूम होता आज तक तुम जिस लीला देखते थे बड़ा आनंद आता था, से जा रहा कहीं हमारी दुष्ट लीला देखना बंद न हो जाए, शंका हो गई। अब ये उसने देखा अकाशुर ने लीला खेलते हुए इनको, उनका उसका गुस्सा और बढ़ा, वो दुख कैसा खेल रहा है, मेरे भी खेल रहा है, मैंने कोई डर उसके समीप ही नहीं, उसके अंदर कोई कमजोरी नहीं, दीनता है, दीनता कैसे आज यहाँ पे आ नहीं सकती, आनंद में दोनों नहीं आता। तो उसने देखा कि ये तो दांत पीसने लगा, बोले जल्दी मारे किसी दिन को इनको न मार दे, बता सकते मार दिया, डर भी आया, फिर सोचा कोई बात नहीं, देखा वो तो बंसी बजा रहा है, ये बंसी बजा रहा है तो देखने में ये अच्छा सा मालूम होता है और तमाम बच्चे इसको घेरे हुए तो यही है, उसने ऊपर से ही सुन लिया देख लिया और फिर उसकी बातें सुन बैठने, कल से बता दिया था कि देखो भाई तुमको पहचानने के बाद बताते हैं, वो लड़का इतना सुंदर है कि ब्रज के सारे नर नारी नहीं पशु पक्षी भी उससे प्रेम करते हैं और उसका रूप जो है ऐसा दिव्य है, ऐसा तेजोमय है कि जहां जाता है उजाला फैला देता है तो सांवला पर फैलाता है प्रकाश उज्जवल, जो रूप श्याम रंग तुम उज्ज्वल हो बलिहारी व प्रेम की गति समुदाय को, जो रूप श्याम रंग तुम उज्ज्वल हो, ये ऐसा सुंदर सांवला रंग है इसमें जब तक न डूबे तब तक तो आदमी का मन काला रहता है, जीवन काला रहता है, कलुषित रहता है, और जब श्याम सरोवर में डूब गया तो अत्यंत उज्ज्वल हो जाता है, ये विपरीत। तो उसने बता दिया कि देखो वो जहां जाता है उजाला फैल जाता है और जहां खड़ा रहता है तमाम पशु पक्षी उसी की ओर ताकते हैं और तमाम नरनारी उसी की ओर देखते हैं, तो तुम पहचान लेना इससे, ये तो बच्चे बच्चों से देख सो क्या, और बोले जरा सा नीला नीला सा है, सुना हमें देखा तो नहीं, नंदित एक कम से कम ध्यानस्थ हो गया, तीन तरह से भगवान का ध्यान होता है, लोग पूछा करते कैसे हो, या तो भय से होता है, या आवश्यकता से होता है और या प्रेम से होता है, पर अधिक अधिक श्रेष्ठ है, कम सको भय तो रोज सुनता आज इसने ऐसे मारा और ऐसा बोले कैसे कपड़े पहन रखे थे, ऐसे पहन रखे थे, सिर पर क्या लगा रखा था, तो रोज आ करके इसके गुप्त कर झांकी का वर्णन करते, वो भी यहां लोग है सब रोज वर्णन करें भगवान का, और ये सुन करके इसका ये चित्त जो है उसी भगवान के से लग रही और ये संलग्न होता जाता, एकाग्र होता जाता भय से, कि यह रूप उसके मन में बैठ गया, कि ये पहचान बचाने लगा सबसे अपने आप ही कि वो कन्हैया ऐसा है, तो पहचान ही नहीं। तो उसने देखा था सुनी तो पहचान गया, बोलिए तो जो कुछ उसने कंस ने कहा था ठीक वही बात कि आंख दिख रही उसको पहचान में कोई बात नहीं होती, अपने आप ही अपने को पहचान आ जाता है। जहां ये खैर बोले मेरी भी तो आंख लग रही है इधर, अगासुर सोचता है कि भी कंस कहता था कि जो देखता है उसकी आंख चली जाती नीचे तो ऊपर से देखता है दूर से तो बड़ा प्यारा लगता है, बड़ा अच्छा लगता। अगासुर के मन में भी अब जिसने अभिलग भरा और मैंने कहा जो पाप नीति उसकी आंखें भी क्षण भर के लिए उधर लगी, फिर मन में ये प्रतिशोध की भावना आई, अरे इसी ने मेरे भाई को मारा, इसी ने मेरी बहन को मारा, तो आज इस बालक का मेरे हाथ से छुटकारा नहीं। इसी का नहीं, मैं जितने भी इसके साथ खेल खेल रहे होंगे उन सारे बच्चों को आज मार डालूंगा, एक बच्चा भी जिंदा नहीं रहेगा, और आज मैं मेरे भाई और मेरी बहन की आत्मा से की तृप्ति के लिए तो तर्पण करूंगा आज इनके खून से मैं, यही इनके प्रति मेरा सद्भाव प्रकट करना होगा। और जब ये मर जाएगा तो ब्रजवासी सब मर जाएंगे अपने आप, जो हमने देख लिया ना ये उसी को बुलाए भी थे, ये इनका प्राण प्राण है, जहां प्राण गए तो वहां दे गिरा, अपने आप ही आज कंस का सारा कंटक दूर हो जाएगा। कंस का कंटक होंगे वृंदावन, तो वृंदावन वासियों के प्राण होंगे ये श्याम सुंदर, ये कन्हैया, ये बालक, इस बालक का जहां निधन हुआ ये सारा विलय वृंदावन नष्ट हो जाएगा और कंस का सारा कंटक दूर हो जाएगा। अब ये शेख चिल्ली की बात है, ये बहिर्मुख लोग जो हैं, बहिर्मुख लोग ये भगवान का तो याद ही करते, ये बिना चिंतन तो होता नहीं क्या करूं, तो बिना चिंतन का सोचा सो सो भी बोले अब कि ये माल खरीदेंगे और उसमें इतना नफा होगा तो ऐसा मकान बनाएंगे, जमीन खरीदेंगे, मालूम क्या क्या भोगों की चिंता करते रहते, सोए भी घर में मंदिर में जाते हैं वही चिंता, कहीं लोभ कहीं काम कहीं क्रोध, ये तीन चीज उनके पीछे धर्मिक जीवन के पीछे तीन चीजें रहती है। देवम नरकम द्वारम नाशम आत्मन काम क्रोध तथा लोग सोए भी पूजा करते हुए भी नाम जपते हुए भी उनका मन आश्रय करता है किसी का, तो यहाँ ये क्रोध में भरा, तो क्रोध का परिणाम होता है हिंसा, क्रोध का परिणाम हिंसा होता है, तो इसके मन में हिंसा जाग उठी और इसने ये सारे सारे व्यर्थ है, ये नहीं अनर्थ निवर्थ की, जो निवर्थ है हमारे मन का जो चिंतन किसी फल को उत्पन्न न करे ये तो है व्यर्थ मनोरथ, और जो बुरा फल उत्पन्न करे वो है अनर्थ मनोरथ। तो हम जितनी जितनी भी क्रोध के काम के लोभ के वश में होकर पाप चिंताएं करते हैं ये सब के सब हमारे अनर्थ मनोरथ हैं, हमारे नरकों में ले जाने वाले हैं मनोरथ भी, इसलिए अनर्थ मनोरथ के इस अगासुर ने अनर्थ मनोरथ किए, मन मन ये उसने श्रीकृष्ण की हिंसा की, श्रीकृष्ण के सखाओं की हिंसा की, श्रीकृष्ण के भक्तों की प्रेमी की हिंसा की, उनके ब्रजवासी की हिंसा की, हिंसा पराये दैत्य हिंसा न हो गया तो ये जब मनुष्य में हिंसा जाग उठती है उस समय विवेक तो नष्ट हो जाता है, पहले ही उसके अंदर राक्षस भाव और ज्यादा भर जाता है,